नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम जापान की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री की 8वीं जापान यात्रा है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ ये उनकी पहली शिखर बैठक होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा आपसी सहयोग शामिल हैं। वे क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। जापान की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाएंगे। वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कल शाम फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि फिनलैंड यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जारी प्रयासों पर भी विचार साझा किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी विक्रेता आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने 31 दिसंबर 2024 से आगे की अवधि के विस्तार का भी अनुमोदन किया। इसे अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। योजना का कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रूपए है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम को लाभान्वित करने वाली 3 परियोजनाओं के मल्टी ट्रैकिंग और गुजरात में कच्छ के दूरदराज के इलाकों को जोड़ने के लिए एक नई रेल लाइन को कल मंजूरी दी। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत का समुद्री क्षेत्र उल्लेखनीय गतिशीलता के साथ विस्तृत हो रहा है। कल नई दिल्ली में भारत समुद्री सप्ताह 2025 की शुरुआती पहल एम्बेसडर्स राउंड टेबल को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार न केवल देश के विकास के लिए बल्कि वैश्विक विकास और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के लिए भी क्षमता निर्माण कर रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 11 वर्ष हो गए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से इस पहल की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेशन लाना और देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कल 30 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि इनमें से 20 माओवादियों पर 81 लाख रुपए का नकद इनाम था। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।
30 माओवादियों ने बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के ऊपर 81 लाख का इनाम था। इसमें मुख्य रूप से उत्तर बस्तर डिवीजन का एक PVCM रैंक का माओवादी आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा कंपनी नंबर 2 के 5 सदस्य, इसी प्रकार एरिया कमेटी लेवल के भी 5 सदस्य, अलग अलग RPC जनताना सरकार सदस्य है और अलग अलग DAKMS के सदस्य भी इसमें शामिल है।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में लगातार बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। भारतीय वायुसेना ने जम्मू और उत्तरी पंजाब में बढ़ते जलस्तर और विनाशकारी बाढ़ को देखते हुए व्यापक राहत और बचाव अभियान शुरू किया है। उधर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा जिलों में बड़े पैमाने पर बचाव और निकासी अभियान चलाया। NDRF ने पिछले 2 दिनों में 3,700 से अधिक लोगों को बचाया। बैडमिंटन में भारत की शीर्ष पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तथा ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु कल पेरिस में BWF विश्व चैंपियनशिप के अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।